તારીખ 17/7/1993 શ્રી સમયસર ગાથા 205 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું હૈદરાબાદમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 76
पहले वाला ज्ञान से दूसरा वाला ज्ञान से ज्ञान से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान का संवेदन लेना है कोई ज्ञान तो ज्ञान से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। वेदन करने वाला भी वही और वेदाने वाला भी देते भी वही वेदन के योग्य भी वही और वेदन करने वाला भी इसलिए ज्ञान से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए ऐसे ज्ञान समझे मैंने किस प्रकार के ज्ञान समझे ऐसे बहुत जीव जितने भी हो संख्या की कोई मर्यादा इसमें बहुत जीव बहुत पुष्कर में बहुत अनेक प्रकार के कर्म करने से या क्रियाकांड करने से भी इस ज्ञान पर ज्ञान पद को पाते राग में ज्ञान नहीं पर मन वचन काय में भी ज्ञान तत्व और यह पद को नहीं पाते हुए ज्ञान पद को मैंने आत्म पद को नहीं पाते हुए वे कर्मों से मुक्त होते कर्म बंधते हैं ना कर्म से मुक्त नहीं होते लेकिन नया कर्म बंधन होता है शुभ प्रकृति का हो लेकिन बंधन तो आखिर में बंधन है वो मुक्ति
नहीं
करते हैं मुक्ति के लिए लेकिन उपाय सच्चा नहीं होने से गलत उपाय होने से होती नहीं। जैसे हम सुख के लिए सब करते हैं संसार की प्रवृत्ति क्यों करते हैं प्राणी मात्र संसार में क्यों प्रवृत्ति करते हैं सुख के लिए किंतु सुख नहीं मिलता है दुख मिलता है सच्चा उपाय नहीं कर सकते। वैसे धर्म के क्षेत्र में भी मुक्ति के लिए सही उपाय नहीं करते उसकी मुक्ति की प्राप्ति नहीं क्या जो मुक्ति मुक्ति चाहते हैं तो मुक्त हो ऐसा उपाय करना चाहते मुक्ति और उपाय करते बचेगा तो उसको कौन सी समझदारी जैसा कि हम चाहते हैं व्यापार करने में मुनाफा करना और कर लेने नुकसान नमा की बजाय नुकसान करे तो व्यापार को किया मैंने ऐसा करता है अरे मुनाफा के लिए किया था लेकिन उसको ध्यान है कि नहीं है कि इसमें नुकसान हुआ कि नफा हुआ देखोगे कि नहीं देखोगे माल खरीदा बाद में माल बेचा तो उसमें मुनाफा हुआ कि नहीं हुआ देखा कि नहीं देखा कि वैसे ही जो उसने मांगा इस भाव में जो हमने देख लिया करता है जो भाव में मानता है उस भाव में दे दो तो फिर मुनाफा हो जाएगा और अभिप्राय समझ कर है और नफा होता है उसको चेक नहीं करते हो ये अभिप्राय किस बात का है अगर अभिप्राय मुनाफे का है तो मुनाफा किया क्या नहीं किया उसको भी देखोगे नहीं आपके परिणाम में शांति होना तो मुक्ति का उपाय है अशांति होना तो मुक्ति का उपाय है तो उतना तो क्योंकि शांति होती है अशांति होती है देखोगे क्या नहीं देखोगे चेक नहीं करोगे तलाश नहीं करोगे अवलोकन नहीं करोगे जांच नहीं करोगे कैसे बात है
शांति होती है
हाँ तो ठीक है मन के ध्यान में ऐसा लगता है ऐसे ही अनंत गाते हैं ऐसी शांति में अनंत गाते हैं तीव्र होने वाला है, आगे जाके तीव्र हो जाएगा। अभाव करो। हमारे देव गुरु शास्त्र क्या कहते हैं, कषाय का क्षय करो, कषाय का अभाव करो। मन करोगे तो फिर तीव्र हो जाएगा, आज में तुम्हारे कल तीव्र हो जाएगा, इसलिए उसका अभाव करो। तो अभाव को ग्रहण कहते हैं, प्रबल कषाय अभाव। सारे कर्म के सारे स्वभाव प्रबल करता है अभाव, बिल्कुल कषाय का अभाव इसी का नाम है। कषाय परिणाम को कर्म कहते
ये भी बात जो आई चल वो भी पढ़ने के बाद आई सृष्टि मेरा मत उन वो शास्त्र रचा है सबसे वो बात है इसमें ज्ञान ज्ञान से बराबर है बात समझते हैं बात बराबर
मान्यता में ऐसा है कि शास्त्र का ज्ञान करने से आत्मा की प्राप्ति होगी तो वो
प्रसन्न बराबर
क्यों
दिया
कि गुरुदेव के पास आने वाले लोग शास्त्र की पढ़ाई बहुत करने लगे हम लोग
दिया
लोग शास्त्र ज्यादा पढ़ते हैं व्रत तो ज्यादा नहीं करते हैं ग्रहणी जो व्रत करते हैं उनकी हम टिप्पणी करते हैं क्या करते हैं जो व्रत करने वाले लोग हैं इनके हम लोग कितने करते हैं गुरुदेव जी ये बात देखिए व्रत करने वाला हम लोग मानते हैं कि हमको आपको प्राप्ति हो जाएगी धर्म की प्राप्ति हो जाएगी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी वो उनका शल्य है शल्य मेरा क्या मिथ्या कौशल्य निदान कौशल्य और माया तीनों एक में आता है ना मिथ्या है ना तथा निदान भी है और वहां माया भी है तो वो जैसे शल्य में पढ़े हैं वैसे अगर हम शास्त्र पढ़ने वाले शास्त्र ज्ञान से आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी धर्म की प्राप्ति हो जाएगी या मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी ऐसी मान्यता जिसकी है वो भी शल्य है कैसे कैसे प्राप्ति होगी और एक पंक्ति के आपको वस्तु के प्रति दृष्टि करने से आपको प्राप्ति होती है ये गुरुदेव का मान्य गुरुदेव याद गया है ये गुरुदेव का देश है
प्राप्ति नहीं होती है इसलिए शास्त्र पढ़ते हैं
तो प्रकट शास्त्र पढ़ते रहोगे दृष्टि नहीं प्रकट करोगे तो उसमें अभिप्राय नहीं क्योंकि ये पढ़ते पढ़ते काम हो जाएगा ये पढ़ते भी तो रोज पढ़ना होगा रोज क्यों पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते हो जाएगा तो मुझे कहते हैं हमारा शल्य वो अज्ञानी कहते हैं वैसे तुम उतना ही अज्ञानी हो इससे कुछ कम अज्ञानी क्यों नहीं पढ़ाया आत्मकल्याण के लिए आया तो आत्मकल्याण के लिए तो विवेक करना पड़ेगा छोड़ करके पाप प्रवचन लगेगा तो आत्मकल्याण के लिए आया ही नहीं था मैंने इसका मतलब क्या हुआ शुरू से तो आत्मकल्याण के लिए नहीं आया था तेरा किसी न किसी प्रकार का राग का पोषण करने के लिए आया था तो तुमको छोड़ा दिया था तुम पाप प्रवचन किया जब श्री गुरु कहते हैं कि हम तुझे ऊपर उठाने के लिए आत्मदृष्टि करवाने के लिए कहते हैं तो वो तो बात सुनता है बात तो पूरी सुननी की अधूरी सुननी जब शास्त्राभ्यास भी छुड़ाते हैं क्रियाकांड भी छुड़ाते हैं तो आगे आत्मदृष्टि करने के लिए छुड़ाते हैं तो बात तो पूरी समझते हैं वो तो ऐसा है कि कोई आदमी को झिलेज नहीं थी कैसा था अतिरेज वाला था कांगला जिसको कहते हैं तो वो चलता था ऐसा कोई किसी जगह के कि चलते चलते अगर वो गिर जाता था सुना का होगा वो बड़ा तो मर जाता तो किसी ने उसकी भलाई के लिए कहा कि भाई आप पढ़ जाओगे तो मर जाओगे संभाल के करो पढ़ जाओगे तो मर जाओगे तो उन्होंने क्या कहा अरे मैं जिंदा हूं तो मरने के लिए बोलता है क्या बात करता है तू तैयार हो गया लड़ाई के लिए मरने को क्यों बोलता है मुझे अरे मैं तुमको जिंदा रखने के लिए बोलता है मरने के लिए नहीं बोलता है क्या कि तुम मर जाओगे तो मर जाओगे इसलिए नहीं मरो इसलिए मैं बोलता हूं तो तुम तो मेरी पूरी बात तो सुनते नहीं तो मरने के लिए झगड़ा करते हैं बात तो पूरी गुरु की सुननी चाहिए तो इसलिए शास्त्र अभ्यास पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे लोग भी शास्त्र अभ्यास में इतने चौड़ जाते हैं उनके कुछ आत्मदृष्टि करते आप लोगों को पिताजी के मास्टर में मिला है
दुरा
थोड़ा आराधन करने में आसान नहीं है। ज्ञान से ज्ञान का भेदन करना तो अनादि से अनजाना भारत होने से इतना आसान नहीं है, तो थोड़ा कठिन है, लगेगा थोड़ा घबराना होता है। परम अवगार दशा पाने से पहले परम अवगार होने का भावना अगर हमारे आत्म कल्याण की तीव्र नहीं होती, अवगार भावना नहीं होती, तो उसमें चढ़ने के बजाय पढ़ने के बहुत स्थान है। मुनाफा होने के बजाय नुकसान होने के अवकाश बहुत है। कैसे कैसे होता है? एक तो संदेह, ऐसा होगा कि नहीं होगा, चिंता करने की संदेह होना। संदेह नहीं हो इसलिए श्री गुरु के वचन को पहले सम्मत करना, फिर हमारे संबंध इसमें नहीं बैठे तो समझने के लिए कोशिश करना, लेकिन शंका नहीं करना, शायद गुरु के लिए दूर होती होगी, ऐसा कर लेना। संदेह होता है वो भी ज्ञान का दोष है, विकल्प कर जाते हैं, इसमें से ऐसा है, उसमें से ऐसा है, इस अपेक्षा से ऐसा है, उस अपेक्षा से ऐसा है, ऐसा विकल्प करने के लिए ज्ञान लाग नहीं है। ज्ञान से ज्ञान का भेदन होता है, इसमें सब विकल्प शांत हो जाता है, विकल्प खत्म होने के लिए मार्ग है, विकल्प बढ़ाने के लिए स्वच्छंदता एक तरह दूसरा दृढ़ता नहीं करता, यहां से स्वच्छंदता स्वच्छंद नहीं हो गए। प्रतिपक्ष होता है कि जब जीव अपना दोष नहीं देखता है तब अपना दोष देखने वाले को स्वच्छंद होगा, तो पति परिणाम नहीं पड़ा, थोड़ी धारणा हो जाए, हो जाए, मान लेकिन बहुत ज्ञान हो गया, ज्ञान तो हुआ नहीं, मान लिया ज्यादा ज्ञान हो गया, क्योंकि दुनिया में नहीं बात करते थे, शास्त्र की बातें तो दुनिया में चलते थे, ऐसी बातों जानने को मिली, मान लिया कि हमको ज्ञान हो गया, लेकिन वो जानकारी के लिए वो ज्ञान नहीं, धारणा ज्ञान वो ज्ञान तो प्रति परिणाम पड़ा हो जाता है। ऐसे कारण से बार 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 जीव को मार पड़ने के कारण बनते हैं, अर्थात ऐसे कारण से जीव ज्ञानाभ्यास करता हुआ भी पूर्व भूमिका को प्राप्त होता नहीं, आगे नहीं बढ़ सकता, तो आगे नहीं बढ़ेगा, वो पीछे जैसे मार्गदर्शन दिया, शास्त्र ने मार्गदर्शन ज्ञान मार्ग के लिए भी मार्गदर्शन दिया, समाप्त करना, ये रेतलाई से बात करती रखी है कि यहाँ जोखिम है, ऐसा कहीं नहीं हो जाए, ध्यान में रख लेना, बहुत अनुभव से लिखी हुई बात है,
जानकारी वाला ज्ञान नहीं है,
जानकारी वाला का ज्ञान ये अनुभव ज्ञान की बात है, ये ज्ञान ही मोक्ष का कारण है, जो ज्ञान अनुभव है वही मोक्ष का कारण है, जो अनुभव ज्ञान की बात है, आत्मज्ञान है वो अनुभव ज्ञान है, अनुभव ज्ञान को भी आत्मज्ञान कहते हैं, क्योंकि आत्मा अनुभव की चीज है, ज्ञान जानने की चीज
नहीं है।
ज्ञान ऐसा मतलब कौन जीव कर सकता है अनुभव,
वो उत्कृष्ट उपासना होता है, बहुत लंबा चला सकता है, उपास करता रहा उसमें तो दूसरा घंटे में भी पूरा हो गए नहीं, देखना हो तो 105 मीटर का प्रभाव होता है, तो देख लेना सम्यक दर्शन के यानी महावीर भगवान के गोद के पात्र कौन है, पहले लिखा है दो सत्पुरुष के चरण का इच्छुक है वही पात्र है, तो डॉक्टर के पास जाता है, तो मेडिकल स्टोर में नहीं जाता, डॉक्टर के पास जाएगा, वो पात्र है। इसलिए भोक्षार्थी को किसको लिया,
सड़क चले रहते हैं,
सड़क निकाल देना सड़क चले रहते हैं। मोक्ष का जिसको अभिलाषी है वो पात्र है, वही अधिकारी है मुक्ति के। इसलिए मोक्षार्थी जीव को ज्ञान का ही ध्यान करना, मतलब ध्यान करना मैंने अवलंबन लेना, ऐसा उपदेश है, ऐसा भगवान का उपदेश है, जिनेन्द्र परमात्मा का ऐसा उपदेश है। मोक्षार्थी वही भव्य है, तो भव्य है तो मोक्षार्थी हो गए तो भव्य है।
एंट्री का पॉइंट मोक्षार्थी,
हाँ एंट्री का पॉइंट मोक्षार्थी हो, बिना एंट्रेंस मिलता तो एंट्रेंस
बहुत हार्ड है।
हार्ड हो कुछ भी हो लेकिन फिर आया क्यों इधर, अगर मोक्षार्थी नहीं होना है तो इधर क्यों आया। और बहुत जगह है, बहुत मंदिर है, बहुत मस्जिद है, बहुत बाजार है, बहुत है सारी दुनिया पर, यही तक क्यों आया। इधर तो मोक्ष की बात है, मोक्षार्थी हो तो इधर आओ, मोक्षार्थी नहीं हो तो और जगह चले जाओ, इधर तो मोक्षार्थी का काम है। ऐसी बात
लगती है। ऐसे राग में रस है इसलिए
ज्ञान है तो साक्षात मोक्ष है, तो ज्ञान मात्र है। उस ज्ञान ज्ञान वही वह ज्ञान ही से ही मिलता है। प्रत्येक परिणाम में रस होता है, रस को परिणाम हो अपना समझो जहां भी रस आता है, जिस परिणाम में रस आता है उसको अनुभव से तो पकड़ने में आता है, उनको बहुत करता है। उसे व्यापार व्यापारी को व्यापार में रस आता है, उसमें भी जो मुनाफा का काम होता है उसमें रस आता है, तो इसमें तो त्रिगुणा होते जाएगा। दाल का अपनी निजा रहता है, रस के अपनी जैसे शास्त्रकार ने तो उसको डिफाइन किया है कि जिस परिणाम को भोगते हुए अनुभव करते हुए दूसरा कोई टीका इसमें आने और हमें कहा चला जाए उसका पता नहीं है। ऐसे परिणामों को रस के परिणाम कहते हैं। है कि नहीं देखो किसी भी देखते हैं रस कितना टाइम किधर जाता है पता नहीं चलता, जो भी इंटरेस्ट का विषय है उसको रस कहते हैं। वो जो बंध तत्व है वो ज्ञान ज्ञान मात्र में बद्ध तत्व मात्र ज्ञान है, और कैसे मिलता है वो ज्ञान से भी ज्ञान मिलता है, दूसरा ज्ञान से दूसरा ज्ञान मिलता वो बात नहीं, वही ज्ञान को हम विद्यमान होने से ज्ञान से ज्ञान मिलता है। ज्ञान को मिलाने के लिए साधनांतर की अन्य साधन की कोई आवश्यकता
भक्ति
मानती है तो भक्ति का भी आत्मसाधन से आएगा, लेकिन भक्ति यानी हम लोग में जो भक्ति का स्वरूप समझ रखता है उतनी बात नहीं है, बहुत गहरी बात है। हम तो एक पद बोलेंगे दो पद बोलेंगे हम देखी नहीं आता क्या है, तो हमने भक्ति कर दिया समान लिए वास्तव में उतना ही कोई भक्ति का स्वरूप नहीं है, ये भक्ति जरूरी हो गई है और केवल शिवराज के प्रयास को हम भक्ति समझ रहे हैं। वास्तव में भक्ति ज्ञान की प्रयास है, भक्ति मैंने बहुमान होना क्या गुणों के प्रति स्वभाव के प्रति कहो या सद्गुण के प्रति कहो बहुमान होना उसका नाम भक्ति है। जैसे हम भगवान की भक्ति करते हैं, गुरु की भक्ति करते हैं, शास्त्र की भक्ति करते हैं, सत्पुरुष की भक्ति करते हैं, आधर्म की भक्ति करते हैं, पांच स्थान में भक्ति करने का क्यों कि वहां हमको बहुमान होता है, इसलिए तो बहुमान बिना पैसा कैसे होता है। कोई रस्ते साधता आदमी के साथ नाम राग करते हैं, रास्ता पर जो चलता है गुजरता है उसके साथ हम राग करते हैं, निवेश करते हैं, तो हमें याद रहता है, तो बहुमान किसके प्रति करेंगे कि जिसमें हम सद्गुण देखेंगे उसके प्रति हमें बहुमान आएगा। क्यों कि हमारी भावना भी ऐसे सद्गुण प्रकट करने की है, इसलिए जिस जीव को अपने आत्मिक गुणों का विकास करना है प्रकट करना है उसको जिन्होंने आत्मगुण प्रकट किया है उसके प्रति बहुमान आए बिना नहीं जाता है, इसका नाम भक्ति। लेकिन वो ज्ञान को पहचान हो तो नहीं कहता तो बच्चों
का
कहा
नहीं कहता ना बच्चा भक्ति होती है
वो भक्ति वास्तव में भक्ति नहीं कही जाती वो भक्ति जिसको कहते हैं ऐसी है तो उसमें तो कोई खास लाभ नहीं है उसमें रुकना है कोई विराजना नहीं करेगा जो भक्ति करेगा वो विराजना उसकी बात करो भक्ति नहीं करेगा तो कभी विराजना कर देगा लेकिन भक्ति करेगा वो विराजना विरोध नहीं आएगा उतना फायदा नहीं लेकिन इससे संतोष लेना पहचान करनी चाहिए और धर्म को मुख्य करके जान करके हमें गुणवान आना नहीं है ऐसी बात नहीं तो बहुत सी बात इसने लिया है किस प्रकार की भक्ति होती है किस प्रकार की होती है उसके परिणाम होते हैं बहुत सी बातें हैं लेकिन खास बात जो है कि केवल शिवराज की पर्याय वाली भक्ति इसके बजाय ज्ञान से उसको समझ करके उनको ग्रहण करके बहुमान आ जाए ये ऐसी भक्ति है जो टीके इसका आधार है इसका आधार है कौन का आधार है
आदमी की प्रति भक्ति एक मिल रहा
है इसका होता ही है एक मार्ग में चलने वाले के प्रति अनुराग हुए बिना नहीं क्या कहते हैं कि हमारे आत्मा का बहुमान गुण भंडार ऐसा कि हमारा आत्मा इसका बहुमान वो निश्चय करते क्योंकि प्रभु है आत्मा कहता है प्रभु है और जो प्रभु से आगे बढ़े हैं क्या कहते हैं तो प्रभु में आगे बढ़े हैं इसके प्रति बहुमान आए बिना प्रबोध भाव बहुमान आए बिना બોક્સ પકડાવું. तो यहाँ पर कहते हैं कि ये ज्ञान ज्ञान से चिंता से अन्य क्रिया से उसकी प्राप्ति नहीं होती. तो पार्थिव ने भक्ति का विशेष करके उपदेश किया है, उसमें एक रहस्य है, मर्म है, वो बात है. इस प्रपुरुष के प्रति भक्ति होती है करना सभी हो या पहचान सको. लोगों पर अपनी भक्ति के परिणाम में दक्षिण मौका अनुपात करता है. दूसरे परिणामों में चारित्रमोबंध होता है और चारित्रमोबंध होने से कभी दक्षिण मुक्ति में भी इसका अनुभव हो जाता है. जो क्रियाकांड है उसमें प्रसार बंद होने से चारित्रम बंद होता है, लेकिन इसमें धर्म मान देने से दर्शन हो जाता है. वो सत्पुरुष प्रत्यक्ष होते हैं, इसके प्रति भक्ति आती है, तो उसमें दर्शन मोह अवश्य बंद होता है. ये एक बड़ा फायदा है. दर्शनों की मदता होती है तो उनको हमें दर्शन समेत जाने के लिए अवकाश होता है. इसलिए इसी मुद्दे पर उन्होंने ऐसा कहा कि भक्ति श्रेष्ठ मार्ग है. क्यों? कि आपने दर्शनों को मंद कर देता है, ऐसा होता है. भक्ति श्रेष्ठ मार्ग है, ऐसा होता है. अब यही उपदेश गाथा में करते हैं. दो बात कही कि ज्ञान ज्ञान से ही चिंता है, अन्य प्रकार से उसकी प्राप्ति में ज्ञान मैंने आत्मा, ज्ञान मैंने आत्मा, तो ज्ञान से ही चिंता है, अन्य प्रकार से नहीं. यही उपदेश आचार्य महाराज सूत्र में कहते हैं, नानो गुणेन विना एदम तो पदम बहुत भी न मानते तम इंद्रियम यदि इच्छसि तम परिप्रोक्षम बहुत लोग अनेक प्रकार के कर्म करने पर भी केवल ज्ञान स्वरूप पद को पा सकते नहीं, पाते नहीं. इसलिए एक भव्य यदि तू कर्म से सर्वथा मुक्त होना चाहता हो तो नियत ऐसा यह ज्ञान को ही ग्रहण कर. क्या कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए, निर्वाण पद की प्राप्ति के लिए, यानी पूर्णता की प्राप्ति के लिए अन्य क्रिया में मत जा, तो ज्ञान को ग्रहण कर. कोई भी परिणाम में समय का और शक्ति का खर्च होता है, कोई भी प्रकार के परिणाम होते हैं उसमें समय का भी खर्च है और शक्ति का भी खर्च है. तो यहां यह कहना है कि ये जीव यदि तुझे समय शक्ति का खर्च करना ही है तो तू इस तरह से उसको खर्च करके जिससे तुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए. मोक्ष प्राप्त करने में भी समय शक्ति का खर्च है और दूसरे परिणाम में भी समय शक्ति का तो खर्च है. तो यथार्थ उपाय कौन सा है मोक्ष का? कहते हैं कि जगत में तो बहुत लोग ऐसे हैं, ज्यादा लोग ऐसे हैं कि वो ज्ञान गुण से रहित है। ज्ञान गुण में नहीं, ज्ञान में ज्ञान का अनुभव नहीं, ज्ञान का गुण है। अरे नाम बिना गुण बिना कसम से प्राप्त समझते नहीं। तो आपने बताया अभी के श्लोक का नाम शब्द दिया है, पर यहाँ अटल महाराज ने नाम शब्द दिया नाम में माफे में। ज्ञान से ज्ञान का अनुभव रहित ऐसे विश्व के बहुत लोग, जगत के बहुत लोग देखे, जो धर्मात्मा है इसके अलावा सब जो भी धर्म के नाम पर जो भी कुछ करते हैं उसमें ज्ञान से ज्ञान का अनुभव किसी को नहीं। अनेक प्रकार के विविध साधन करते हैं, किसी को मोक्ष पद के लिए आत्मपद के आत्मस्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान स्वरूप ऐसा जो आत्मा उसकी प्राप्ति बिना ज्ञान हो जाए, ज्ञान स्वरूप की प्राप्ति बिना ज्ञान हो जाए, ये बात तो कभी संभव नहीं। ज्ञान भी नहीं और ये विपरीत ज्ञान चल रहा है वो भी नहीं। ज्ञान से ज्ञान का अनुभव उसका नाम ज्ञान होगा। ज्ञान होगा इसलिए तो पहले वो बात है, ज्ञान को माने क्या, ज्ञान ज्ञान को वेदन करता है, यही ज्ञान का गुण है, ऐसा ही ज्ञान का प्रभाव है। तो ऐसे लोग नहीं है, धर्म के क्षेत्र में बहुत लोग जो भी धर्म करते हैं उसमें बहुत लोग तो नाम गुण नहीं है, नाम गुण नहीं ही होते हैं और उनको ज्ञान स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती।
શાસ્ત્ર થી જ્ઞાન ન થાય કીધું, અમે શાસ્ત્ર થી જ્ઞાન થાય પૂછ્યું, શાસ્ત્ર રચવા શા માટે પ્રશ્ન
શાસ્ત્ર એટલે લિખા હૈ કે ઉસમે ભી યે લિખા હૈ કે જ્ઞાન સે જ્ઞાન કા અનુભવ કરો।
હમને શાસ્ત્ર શાસ્ત્ર અભ્યાસ કરને કે બાદ જ્ઞાન નિકાલ હો સકે હો સકેગા ને।
अभ्यास बहुत करते
हैं
लेकिन
ज्ञान से ज्ञान वो बात वो रुचि से नहीं होता, वो तो रुचि नहीं, सिर्फ पट डालता डालने का पट डालता। लेकिन शास्त्र से बोले जो ज्ञान नहीं होता तो वो शास्त्र बोल रहा हूँ आप कि शास्त्र का रहता।
शास्त्र पढ़ते हैं तो उपयोग ज्ञान वेदन में रहता है या
ज्ञान वेदन में रहना चाहिए। शास्त्र में कोई भी कुछ भी लिखा है तो मालूम पड़ेगा।
चाहे उपयोग शास्त्र पढ़े या तो अपना वेदन करे प्रसन्न करवा
तो अपने को मालूम है। सीधा
वो कहता है हमारे देश हमारे गुरु तो ऐसा कहता है कि तुम हमारी तरफ मत दे, तुम तुम्हारा अनुभव कर, क्योंकि ये पिता की जितने गुरु शास्त्र है उनको अपने और किसी को उपयोग रखने के लिए अपेक्षा रखती नहीं है, तो पिता की है
वो कब मालूम पड़ेगा, वो कब मालूम पड़ेगा पढ़ने के बाद में। मतलब ये कहना है और
कहेंगे तो सुनेंगे तो मालूम पड़ेगा,
सुनेंगे पड़ेगा
सुन के भी इनकी आज्ञा में नहीं रहेंगे।
हाँ,
वो कहे ऐसा नहीं करेंगे तो शास्त्र पढ़ते रहेंगे
तो
ऐसे कहेंगे कि तुम तो हमारी आज्ञा तो मानता
नहीं,
ऐसा नहीं करो अपने अपने स्थान में सब चीज है, वो अपने अपने स्थान में है। वहां है वहां देवगुरु शास्त्र भी है, वहां में देवगुरु शास्त्र में કરવા નહીં, તો ઉસકો નિશ્ચય કે આપણે ચાલતો હોઈ શકતા, લેકિન ઉસકો પકડ કર બેઠ જાવે વ્યવહાર વ્યવહાર કે સ્થાન પે નહીં રહેગા, હવા નિશ્ચય કા સ્થાન હો જાયેગા, બડી ગલતી હોય. इसलिए वजन देना पहले तो वजन होता है कि नहीं, पहले तो शास्त्र पढ़ना होता है कि नहीं, ये अभी प्रैक्टिकल हो जाएगी. इसको नहीं देना, बीच में आता है क्या, बीच में वो देव गुरु शास्त्र आदि बीच में आता है, उतनी बात लेना है, लेकिन वहां समझना नहीं. अगर समझने जाओगे तो गुरु जी क्या कहते हैं, वो
જ્ઞાન નહી હોતા તો પ્રગટ પુરુષ તો કહેતે પેટર્ન થઈએ
કોઈ એક વાત કા નિકાલ કરના જો વાત જ્ઞાનીઓ ને જ્યાં ભી કહી હૈ વહાં અપને સ્થાન મે ઠીક હિ કહી હૈ હર વાત એક ચીજ તો લાગુ નહીં હોતી યે જો વાત હૈ વો તો એક શિક્ષા હૈ ઉપદેશ હૈ બોધ હૈ દવાઈ હૈ લેકિન સબ દવાઈ એક મરીજ કો એક દવા મેં સભી મરીજ કો એક દવા સભી દર્દી કો દી જાતે સભી દવા એક દર્દી કો દી જાતે અચ્છી તરહ જાણતે જૈસે યહાં ભી રહેતા શાસ્ત્ર હૈ ઉસમે બહુત સી દવાઈ હૈ યે મેડિકલ સ્ટોર હૈ શાસ્ત્ર પઢને વાલે કો કિતને સમજ હોની ચાહીએ કે મેરે લાયક બાત કૌન સી હૈ મેરી દવા ક્યાં આતી હૈ ऐसा अगर नहीं समझे शास्त्र पढ़ने वाला तो शास्त्र पढ़ने का अधिकारी नहीं है. शास्त्र पढ़ने का अधिकारी कौन है कि जो इसमें से अपनी दवा खोज सके वो
कोई भी शास्त्र में एक भी आप पढ़ो कोई
सबको सबको को भी अनेक भूमिका है, अनेक प्रकार के योग्यता है, सब अज्ञान एक प्रकार के नहीं होते. कोई निश्चय आवाज नहीं होते तो उसको रहा का उपदेश देंगे, कोई हमारे मन में होंगे तो उसको निश्चय का उपदेश देंगे, कोई रुपया भाव से होंगे तो उसको दोनों को ठीक करने का उपदेश देंगे. तो मोटी मोटी बात है, उसके एक प्रभेद बहुत से हैं. एक दवाई सबको लागू अपने अपने स्थान में उतना विचार कर इसकी चर्चा करेंगे तो यही साथ रहेंगे. तो ये साथ और प्रश्न भी देखा हो जाए. यहाँ तो जब तो उसकी बात है साथ और ज्ञान को छोड़ करके दूसरे क्रिया का उनको साधन बताने को क्या होगा तो मोक्ष मिलने वाला तो वो पर तो सकता है, देवलोक स्वर्ग मिल सकता है, लेकिन मोक्ष मिलने वाला नहीं. सर्व तो मोक्ष के लिए इसलिए ज्ञान स्वरूप पद को प्राप्त पाते नहीं. इसलिए ये भव्य क्या कहा, पद का कितना है कहा, इसलिए ये भव्य हमें करके मोक्ष के लिए इधर आए हो भैया, क्या कहेंगे तुम घर के लिए इधर नहीं आए, मोक्ष के लिए तुम तो आए ऐसा बोलते हैं. यदि तुम कर्म से सर्वथा मुक्त होना चाहते हो तेरी अभिलाषा पूर्णता की है. तेरी अभिलाषा कौन सी है, तो वो शुद्ध होने की है, मुक्त होने की है। तो नियत ऐसे ज्ञान को ग्रहण करती है, नियत मैंने अपना रूप भी बदलता, जो अपना रूप नहीं बदलता है ऐसा जो चैतन्य स्वभाव है, निराभाव चैतन्य, क्या बताए इसको, निराभाव चैतन्य बड़ा सा निराभाव चैतन्य, ऐसे जीव को जीव के प्रति बड़ी ने बढ़ करके मोड़ करके मुड़ करके देखे तो उसका निश्चय बराबर हो सकता है, उसका ज्ञान हो सकता है, क्योंकि जीव तत्व अंतर तत्व है, उसका ज्ञान अंतर्मुख होने से होता है, इधर बहिर्मुख होने से जीव का ज्ञान प्रकाश मान है, ऐसा जीव का निराभास चैतन्य का ज्ञान होगा। ठीक है, कर्म में मैंने कर्म कांड में ज्ञान का प्रकाश मान नहीं होने से कर्म कांड मैंने राग और राग के अनुसार मन बचत काया की क्रिया, उसको कर्मकांड कहते हैं। इधर कर्मकांड में ज्ञान का प्रकाशन नहीं होने से समस्त तगड़ा मैंने समस्त कर्म से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, कितना भी कर्म करो नाम की प्रधानता से कुछ भी करो, इसलिए तो बोल दिया कि अन्य गति है वो जिना क्या बिना करते हैं, और जो जैनी है वो दीक्षा लेकर के महाव्रत आदि तपस्या भी बहुत करते हैं, लेकिन इसको मोक्ष